ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
वही श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करने से वही फल हमें आज भी मिल सकता है। जो फल भगवान के वृंदावन द्वारका या मथुरा में भगवान ने जो लीला करके जो सारे भक्तों को आकर्षित किया, वही फल हम लोग यदि उनकी कथा सुनेंगे तो उससे हमें मिल सकता है। और उसी के लिए भगवान अपने भक्तों को भेजते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर या फिर अन्य बहुत सारे हमारे आचार्य बार बार इस धरा गांव पर आते रहते हैं। क्या करने के लिए आते रहते हैं? वे आते हैं और भगवान के गुण रूप लीला आदि का जो वर्णन श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में है उसको एज इट इज गाते हैं। और केवल गाकर भगवान के गुणों को रखकर, भगवान की कीर्ति, भगवान का यश संसार के सामने रखकर क्या होता है, सारे लोग भगवान के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, है कि नहीं? तो भगवान भागवत के माध्यम से आज भी हम लोगों के सामने हैं। ऐसा कभी समय नहीं है कि साधु लोग नहीं है, और भागवत तो हमेशा है ही, भागवत तो कलयुग के नहीं आया हुआ है। तो साधुओं के माध्यम से आज भी भगवान की लीला उनके मुख से प्रकाशित होती रहती है। तो हम सबको विचार करना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में विदेशों में गए और उन्होंने सर्वत्र कृष्ण भावना का प्रचार किया। कौन जानता था कि इस पाश्चात्य देश में जब सारे लोग मांस मच्छी मटन आदि खाने में लगे हुए हैं, वो लोग सारे कृष्ण के भक्त बन जाए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जैसे भगवान के महान भक्त वहाँ पर गए, उन्होंने भगवान की कीर्ति और यश को गाया और उससे वे लोग सब लोग भक्त बन गए। तो शास्त्रों की रचना इसी के लिए की गई है ताकि हम लोग उसका लाभ उठा सकें, साधुओं के मुख से उनको सुन सके, उसको पढ़ सके, उसका अध्ययन कर सके और उसी में से बोल सके। इसलिए शास्त्र हमारे सामने है, श्रीमद् भागवत है, भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है। तो ये मुख्य प्रयोजन है। तो परीक्षित महाराज ने जब पूतना का उद्धार के विषय में सुना, क्या सुना परीक्षित महाराज ने कि पूतना जैसे राक्षसी का उद्धार हो गया। अरे वो राक्षसी थी जो कृष्ण को मारने के लिए आई थी। अब विचार कीजिए कि कोई आपको मारने के लिए आ जाए, कोई बंदूक बिंदूक लेके, रिवॉल्वर लेके सीधा आपके घर में गुजर, आपका बंदूक रोक दे, तो आप उसका क्या करेंगे बताइए? आप उसका स्वागत करेंगे, उसके चरण धोएंगे, चरण धो देंगे, उसके बाद उसको घर पर बैठाएंगे, अच्छा से खाना खिलाएंगे? नहीं, ऐसे तो कभी करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए भगवान की कितनी दयालुता है। जो पूतना राक्षसी भगवान को मारने के लिए आए थे, उस पूतना को भगवान ने मातृगति दी। तो इससे एक पॉइंट तो पता चलता है कि भगवान हमारे डायरेक्ट साइड को नहीं देखते। हमारे में जो अवगुण है, हमारे में जो दुर्गुण है, हमें जो बैड हैबिट्स है, वो भगवान नहीं देखते। हमने थोड़ी सी भी भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उसको सुमेरु पर्वत के जैसे लेते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि थोड़ी सेवा करनी चाहिए, तो सेवा बहुत अच्छे से प्रेम से सेवा करनी चाहिए। तो शुभदेव गोस्वामी प्रसंग में बता रहे थे कि अगर पूतना जैसे राक्षसी को मातृगति मिल सकती है, तो जो लोग 16 माला जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, सब कुछ अच्छे से भगवान को प्रेम पूर्वक उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी अच्छे से सेवा करते हैं, उन लोगों की सद्गति में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन लोगों की सद्गति निश्चित है, उन लोगों का उद्धार निश्चित है। तो हम भक्तों के लिए एक आश्वासन है, जो पूतना उद्धार लीला है इसको बार बार सुनना चाहिए। इसमें शुभदेव गोस्वामी ने आशीर्वाद ये रखा है कि जो पूतना उद्धार लीला को सुनेगा, पढ़ेगा, उसकी मति गोविंद के चरण कमलों में लग जाएगी, उसको गोविंद के चरण में प्रेम हो जाएगा। तो इसीलिए सनातन को शुद्ध गोस्वामी एक कंडीशन रखते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सुनने से। लेकिन सनातन गोस्वामी तो इस कंडीशन को भी हटा देते हैं, बोले श्रद्धा हो या श्रद्धा ना हो बस सुन लो। किसी में श्रद्धा है भगवान में या श्रद्धा नहीं है, बस इस कथा को सुन लीजिए, आपकी मति गोविंद में लग जाएगी, आपको भगवान का प्रेम बढ़ जाएगा, आपके हृदय में कृष्ण की भक्ति अधिक हो जाएगी, ऐसा सनातन गोस्वामी कहते हैं। तो महाराज परीक्षित इस कथा को सुनकर, उतना उद्धार की कथा को सुनकर महाराज परीक्षित कहते हैं, हे शुभदेव गोस्वामी, कृष्ण कथा करने से 4 चीजें होती है। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण कथा का श्रवण करने से 4 चीजें होती है। प्रथम चीज, भगवत संबंधी कथा में जो अरुचि होती है। मान लीजिए कि हम लोग कथा में बैठे हैं लेकिन लेकिन या फिर मान लीजिए कथा में जाना है लेकिन अरुचि है, अरुचि मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो लेकिन इंटरेस्ट आएगा कैसे? तो कथा में बैठने से ही इंटरेस्ट आएगा। तो भगवान के विषय में कथा सुनने से जो अरुचि है, अरुचि मतलब जिसमें इंटरेस्ट जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, भगवत भक्ति के लिए प्रोत्साहन नहीं है जिसके हृदय में, वो उत्साहित हो जाएगा उसके और उसके उसके हृदय में यदि विविध विषयों की तृष्णा है। हमारे हृदय में बहुत सारी तृष्णाएँ होती हैं, बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं संसार के लिए, कृष्ण के लिए कम होती है लेकिन संसार के लिए ज़्यादा होती है। ये चाहिए, वो चाहिए, आज 1200 स्क्वायर फीट का घर हो गया तो कल 2000 का चाहिए, आज अगर घर पर ऑल्टो है तो कल स्कोडा चाहिए, स्कोडा के बाद मर्सिडीज बेंज चाहिए, इस तरह से हमारी तृष्णा है। और अगर बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया तो अगले साल और प्रॉफिट होना चाहिए, उसके लिए हम लोग साल भर लगे रहते हैं। फिर इस तरह से संसार में और भी बहुत सारी कामनाएं होती हैं। ये कामनाएं हम लोग भक्तों के जीवन में देखते हैं कि ये खत्म नहीं हो पाती। हम लोग यदि भक्ति करते हैं, जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कामनाएं बहुत बढ़ती जाती हैं। तो इन तृष्णाओं का, इस संसार के प्रति जो वासनाएं हैं, इसका अंत करने का एक उपाय है भगवान के गुणों का श्रवण। भागवत कथा को सुनने से ये जो वासनाएं खत्म हो जाती है, ये दो चीज हो गई। तीसरा, मनुष्य का जो हमारा जो अंतकरण है, हमारा जो हृदय है, वो शुभ हो जाएगा। और चौथा, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाएगी और भगवान के भक्तों से प्रेम होगा। भगवान के चरणों में भक्ति हो जाएगी और भगवान के भक्तों से प्रेम होगा, वो अच्छे लगने लगेंगे। अक्सर संसार में हम लोग बहुत सारे ऐसे भौतिकवादी लोगों के संग में रहते हैं, तो उनके संगति में रहते रहते या फिर पहले से उसी में रहते हैं तो भगवान के भक्त अच्छे नहीं लगते, लेकिन भगवान की कथाओं को सुनने से हमारा भक्तों से प्रेम हो जाएगा। तो इस तरह से शुभदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित विनंती करते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे जिस तरह से आपने पूतना उद्धार का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया और भगवान की महिमा का वर्णन किया, उसी तरह से आप हमें विस्तार से और भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो शुभदेव गोस्वामी आगे की लीलाओं को प्रेजेंट करते हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान के करवट बदलने का, भगवान 3 महीने के हो चुके थे, उन्होंने करवट बदली। जन्म लेने के बाद बालक अक्सर सीधा सोते हैं, लेकिन जब 3रा महीना आता है तो वो करवट बदल देते हैं। तो भगवान के संबंध में, या पहले भी छोटे बच्चों के हर एक हरकतों पर एक महोत्सव हुआ करता था, तो भगवान के करवट बदलने का एक महोत्सव मनाया गया कि भगवान कृष्ण ने करवट बदली। और उसी दिन जिस दिन उन्होंने करवट बदली, उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। जन्म नक्षत्र का अर्थ है कि 3 महीने उनके जन्म को हो चुके थे। पर ऐसे शुभ दिन पर एक महोत्सव रखा गया था और सारे ब्रजवासियों को घर पर बुलाया गया, सारे ब्रजवासियों को। तो यशोदा जी ने सारे ब्रजवासियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों के मुख से भगवान के लिए स्वस्ति वाचन करा रहे। देखिए, आज भी हमारे घर पे प्रथा होती है, जब घर पे नया बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग साधुओं के घर पे बुलाते हैं, उससे आशीर्वाद दिलवाते हैं, घर पे कीर्तन रखते हैं। तो उसी तरह का एक महोत्सव यशोदा और नंद बाबा ने अपने बच्चों को ले रखा था। तो जब सारे साधु लोग घर पे आ गए, सब ने और कुछ ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, स्तुति पाठ किए, स्वस्ति वाचन किया, उसके बाद सब ने मिलकर भगवान का अभिषेक किया। और भगवान का अभिषेक करने के पश्चात भगवान को दूध पिलाया गया और फिर माँ यशोदा ने देखा कि कृष्ण सोने वाले हैं, उनको नींद आ रही है। तो माँ यशोदा ने कृष्ण को एक शकट के नीचे रख दिया। शकट अर्थात एक बैलगाड़ी, जिसको कहते हैं, जो बैलगाड़ी की जो गाड़ी है उसके नीचे रख दिया और उसके ऊपर दही, माखन इत्यादि बहुत सारी सामग्री रख दी गई थी। और कृष्ण तो सो चुके थे और माता यशोदा जो घर पे अतिथि आ रहे थे, उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी। ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था, ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के गहने दिए जा रहे थे। ऐसा आज भी प्रथा है कि नया बच्चा घर पे जन्म होता है तो साधु लोग घर पे आते तो उनको दान दिया जाता है। पहले तो हजारों गाय दान दी जाती थी, बहुत सारे सोना दिया जाता था और बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएंगे तो बच्चों को आशीर्वाद देंगे और बच्चों की रक्षा होगी। तो मुख्य उद्देश्य ये बच्चों के उपलक्ष में दान करने का या सेवा करने का ये होता है कि बच्चों का मंगल हो। यदि बच्चों के नसीब में, अगर बच्चों के कुंडली में कोई गलत योग आ रहा है तो साधुओं की सेवा करने से सबसे बड़ा उपाय है। कोई पूजा इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा उपाय साधुओं की सेवा करो, भगवत घर पे भगवान का कीर्तन करो, उससे और साधुओं के आशीर्वाद से बच्चे का मंगल हो जाएगा, बच्चे का कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से सारा महोत्सव चल रहा था और उस समय यशोदा बहुत बिजी थी अपने स्वागत सत्कार में दूसरे लोगों के, और उसी समय भगवान वापस जग गए। और जैसे ही भगवान जग गए, भगवान दौड़े लग गए, रोने लग गए, और उनको दूध चाहिए था, छोटे से बच्चे थे तो उनको दूध चाहिए था, और दूध मिला नहीं, इतना शोर शराबा था, इतना गान बजान हो रहा था, बहुत सारे गाने बजाने की व्यवस्था भी की गई थी, बहुत अलग अलग, जैसे हमारे जन्माष्टमी के समय हम लोग ड्रामा रखते हैं और विविध प्रकार के प्रोग्राम रखते हैं, उसी तरह से नंद बाबा ने बहुत सारे विविध प्रकार के प्रोग्राम्स का आयोजन किया था, तो वो सब चल रहा था और उसमें किसी को भी, यशोदा जी को भी, भगवान के रोने का आवाज़ नहीं आया। और जब भगवान बोल रहे थे, सोच रहे थे, मैं गोलोक वृंदावन से इसके पास आया हूँ और इन लोगों को, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी इन लोगों को जरा अभी सबक सिखाता हूँ, तो भगवान ने पैर हिलाते हिलाते भगवान ने क्या किया, छकड़े को दे मारा, और जो छकड़ा था, इतना बड़ा छकड़ा था, थड़ाम करके उल्टा होकर गिर गया। अब जब वो गिर गया तब अकस्मात सबकी नज़र कृष्ण के पास चली गई, कृष्ण कहाँ चला गया, कृष्ण को क्या हो गया, सब लोग दौड़ पड़े, और दौड़ पड़े तो सब कृष्ण ठीक थे। अब विचार कीजिए कि एक अचानक से एक सामान्य जैसे कि ट्रक खड़ा है और ट्रक अचानक से पलटी मार जाए, खड़े खड़े सबके देखते देखते एक बड़ा सा सामान से लदा हुआ ट्रक है उल्टी उल्टा पलट जाए तो हम कितने डर जाएंगे। तो उसी तरह सारे ब्रजवासी लोग डर गए, गोकुलवासी डर गए, वहां पर आके तुरंत यशोदा माँ ने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। और लेकिन ये जब हुआ तो सारे गोकुलवासी चर्चा करने लगे, ये हो कैसे गया कि अपने आप ये शकल उलट कैसे गया, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं है, ये हो कैसे गया। तो छोटे बच्चों ने कहा, ओ अंकल हमने देखा है, क्या हुआ। अरे इसी कृष्ण ने अपने पैर उठाकर छकड़े को उल्टा दे मारा, तो इसी बच्चे के पैर से ये सब उलट गया है। अब सारे गो बोले लगे कि तुम लोगों की मति भ्रमित हो गई है, पता नहीं तुम लोगों ने क्या देख लिया, छोटा सा बच्चा 3 महीने का कैसे इतना बड़ा छकड़ा उठा दे कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते अपने पैर से, ये कैसे कर सकता है। तो सब लोगों ने बच्चों की इस बात को हंसते हुए निकाल लिया, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने पुतला उद्धार के प्रसंग को याद किया था, उन लोगों को लगा नहीं हो सकता है, अगर इतने बड़े राक्षसी को मार सकता है तो उसके सामने छोटा छकड़ा क्या है। लेकिन फिर भी बाद में कृष्ण का जो मासूम मुंह था उसकी तरफ देखने लगा, अरे नहीं कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता, इतना छोटा सा बच्चा क्या करेगा, तो वो सोच कर उन लोग छोड़ दिए। तो फिर उन लोगों में फिर यशोदा जी ने तुरंत ब्राह्मणों को फिर से बुलाया और सब सारे ब्राह्मणों ने फिर से भगवान के लिए स्वस्ति वाचन कराया, मंगल वाचन कराया, वेदों से मंत्र बोले गए, रक्षा मंत्र बोले गए, इत्यादि सारे कार्य कर रहे थे, और इस तरह से भगवान की रक्षा हो गई। तो नंद बाबा ने देखा कि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था, उसी कारण से छकड़ा उलट जाने पर भी भगवान सुरक्षित थे, तो नंद बाबा का ब्राह्मणों के प्रति जो विश्वास था और बढ़ गया। नंद बाबा ने क्या किया, ब्राह्मणों को और बहुत सारे गौ दान किए, और इस बार जो उन्होंने गौ दान की थी उसके हर एक गाय के ऊपर सोने की चेन थे, अच्छे से कपड़े लगे हुए थे, उनको हार पहनाए गए थे, इस तरह से बहुत सारे जो गौ को ब्राह्मणों को दान दे दिया गया था। हमारे कुछ आचार्य हैं, वो इस शकट भंजन जो लीला हुई थी उसके पीछे का रहस्य बताना चाहते हैं। अब ये शकट जो था, ये जो बैलगाड़ी थी उस पर एक असुर बैठा हुआ था। अब ये असुर कौन था, हिरण्यकश्यपु, उसमें से जो हिरण्यक्ष था उसका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था उत्कच। तो उत्कच हिरण्यक्ष का पुत्र था, कोई किसी दादा का अगर कोई दादा का कोई भाई है उसका कोई बेटा है तो वो भी दादा भाई भी नहीं कहेगा। तो हिरण्याक्ष का पुत्र था तो साधु भी हिरण्याक्ष का पुत्र था तो वो भी साथ भाई भी नहीं कर रहा था। तो ऐसे करते करते एक बार साधुओं को परेशान करते करते एक बार वो लोमस ऋषि के आश्रम में घुस गया और लोमस ऋषि के आश्रम में उसने बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ के फेंक दिया। लोमस ऋषि की समाधि टूट गई और देखा तो ये असुर है कि मुझे परेशान करने आ रहा है यहाँ पे। तो लोमस ऋषि ने उसको शाप दे दिया कि नीच तू देहरहित हो जा। तो जैसे ही लोमस ऋषि का यह श्राप सुना तो उस उत्कच का जो देह था वो गलने लगा और उसी स्थिति में वो लोमस ऋषि के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज जी माफ कर दीजिए साधु जी, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जानता था लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, साधुओं की महिमा को समझ गए, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। तब लोमस ऋषि ने कहा ठीक है, भगवान के चरणों का स्पर्श पाने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो वही जो हिरण्यास का जो पुत्र था उत्कच वही इस शकट पर बैठा हुआ था और भगवान ने लोमस ऋषि के वादा को जो उन्होंने जो वरदान दिया था या शाप दिया था उसको पूरा करने के लिए भगवान ने उस शकट को लात मार दी। तो ये थी शकट भंजन लीला। उसके आगे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं प्रणावत की लीला, प्रणावत उद्धार। एक बार अकस्मात माँ यशोदा अपने पुत्र को कृष्ण को दूध पिला रहे हैं और दूध पिलाते पिलाते अचानक से कृष्ण जो है उनका वजन एकदम बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि मान लीजिए कि एक पत्थर उसके पूंछ के गोद में आ गया हो। मान लीजिए आपके गोद में एक इतनी बड़े एक गाड़ी अचानक से आपका बेटा है लेकिन उसका वजन हाथी जैसा हो जाए तो क्या करेंगे, डर जाएंगे आप। तो यशोदा माता भी डर गई और उस डर के मारे उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने पुत्र को उठा के नीचे रख दिया। और विचार कर रहे हैं कि मेरे एक कौन सी भगवान की लीला है कि मेरा पुत्र का वजन इतना बढ़ गया। और यशोदा ने उसको नीचे रखते हुए भगवान का स्मरण करते अपने काम में लग गए। बिल्कुल उसी वक्त ठीक उसी समय कंस का निजी सेवक प्रणावत जो था वो कंस का पर्सनल सेवक था और कंस के आदेश पर ही वो यहाँ पर आया था, एक त्रणावत एक भवंडर के रूप में आया था। और जैसे वो भवंडर के रूप में वहां पर आ गया तो सर्वप्रथम गोकुल में आया और सीधा नंद बाबा के घर पे गया और उसने कृष्ण को उठा लिया। और जैसे ही तो यशोदा समझ गई कि कुछ गड़बड़ हो गई है तो यशोदा जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसी बहाने से वो जाकर अपने लाला को जिस स्थान पर लाला को छोड़ दिया था वहां पर खोजने लगी और खोजने से पता चले कि लाला तो वहां है नहीं। और इस प्रणावत ने क्या किया था, ब्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया था, कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। हम लोग ये अनुभव कर सकते हैं जब हम लोग दिल्ली या वृंदावन जाते ठंडी के दिनों में तो हम लोग थोड़े 5-10 मीटर की दूरी पर से कोई चीज़ें देख नहीं पाते जब ज़्यादा अधिक कोहरा हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर सब लोगों को प्रणावत ने एक बहुत बड़े धूल के भवंडर से ढक दिया था, कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था। बस सबकी चिल्लाहट, यशोदा की चिल्लाहट गोपियाँ सुन रही थी, गोपियों की चिल्लाहट यशोदा सुन रही थी और इस तरह से वे लोग खुद एक दूसरे को पहचानने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन यशोदा को जब मालूम पड़ा कि उसका लाला नहीं है वहाँ पर तो वहाँ पर यशोदा बेहोश हो गए, बेहोश में भी यशोदा गिर गई वहाँ पर। तो उसी समय वो त्रिनावर जो था वो थोड़ा दूर चला गया और गोपियों ने यशोदा की आवाज़ सुनकर उसी कमरे में गए और यशोदा जी को देखा और देखा कि लाला वहाँ पर नहीं है। तो तुरंत लाला की खोज करने के लिए वे लोग बाहर चली गई। तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा असुर था, उसने भगवान को पकड़ रखा है। तो भगवान अभी असुर था धनावर था वो बहुत विशाल काय था लेकिन भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया मान लो कि नीलगिरी का पर्वत हो। तो उस बड़े विशाल काय असुर को भी भगवान भारी पड़ने लग गए और विचार करने के बाप रे ये छोटा सा बालक है कि नीलगिरी का पर्वत है। तो उसने तो भगवान ने उसके गले को पकड़ रखा था, भगवान ने एकदम उसके गले को पकड़ रखा था और उसके प्राण हर रहे थे भगवान। और उसी समय उसके प्राण भर कर उड़ गए, उसके आंखें बाहर आ गई और वो आकाश में ही मर गया। और भगवान उसको लेते हुए छोटा सा बालक, 3 महीने का बालक, जिस तरह से पैराशूट जैसे आजकल लोग उड़ते हैं, उसी तरह से भगवान भी उसका पैराशूट का थोड़ा आनंद लेते हुए भगवान उसको लेकर खड़ा होकर गिर गए। और भगवान ने देखा कि बड़े से चट्टान पर, बड़े से पत्थर पर उसको गिरा दिया, और जैसी कृणावर गिरा वो तो मर चुका था, लेकिन जैसी वो गिरा तो उसके सारे हड्डियां पिड्डियां जो भी थी शरीर में ये सब बिखर गई। और भगवान जैसे पुतना के देह पर खेल रहे थे वैसे ही इसके देह पर भी खेलने लग गए। और जैसे ही गोपी ने देखा कि ये तृणावत के छाती पर भगवान खेल रहे, तुरंत वो दौड़ पड़ी और उन्होंने भगवान को गोद में ले लिया और उन्होंने अपनी माता को दे दिया। और माता ने फिर वही स्तनपान कराया और अब फिर से मेरा लाला बच गया, इसका भगवान को धन्यवाद देने लगे। अब विचार कीजिए, आप खुद ही विचार कीजिए कि मान लीजिए आपका घर का कोई बच्चा है और बार बार एक्सीडेंट से या बीमारी से बच रहा है, तो एक चिंता हो जाएगी, माता पिता को चिंता हो जाएगी बार बार, या फिर बार बार उसे कोई परेशान कर रहा है बच्चे को, तो एक चिंता हो जाएगी, घर माता पिता को चिंता हो जाएगी। उसी तरह से यशोदा नंद बाबा ऐसे चिंतित होंगे कि हमारे बच्चे के साथ क्यों कह रहा है, पहले पूतना आ गई, पहले तृणावत आ गया, अब ये शकट भंजन हो गया। तो इस तरह से माता जो थी वो बहुत परेशान हो रही थी कि हो क्या रहा है मेरे बेटे के साथ। इस तृणावत के बारे में हमारे आचार्यगण कहते हैं कि पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम का एक राजा था, और सहस्त्राक्ष ये अपनी बहुत सारे राजाओं के साथ एक बार जल में विहार कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था, और उसी समय अकस्मात वहां पर दुर्वासा मुनि आ गए, और दुर्वासा ऋषि को देखकर सहस तो ये था कि वो अपने जो जल क्रीड़ा कर रहा था उसमें से बाहर आके दुर्वासा जी को प्रणाम करता, एक तो ये दुर्वासा जी है, थोड़े समय में खुश हो जाते तो एकदम तुरंत दूसरे क्षण में वो क्रोधित हो जाते हैं। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है तो दुर्वासा जी का क्रोध आ गया, उन्हें नीच तो इतना आसक्त हो रहा है कि मैं दुर्वासा यहाँ पर आया तुझे मुझे प्रणाम करने में इतनी परेशानी हो रही है, तो इसलिए जा और तू भवंडर बन जा। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि ने उसको शाप दिया तो वो भवंडर बन गया था। तो उसी स्थिति में उन्होंने दुर्वासा ऋषि के चरण में गए, हैं दुर्वासा ऋषि आपकी महिमा अपार है, आप रुद्र के अंश है, अब उस पर कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, सहायता ये कीजिए कि किसी तरह से मुझे फिर से शरीर दे दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, वैवस्वत मनवंतर में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो उनके स्पर्श से तू मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से तृणावत की स्थिति थी। उसके बाद एक और घटना घटी कि एक बार माता कृष्ण को दूध पिलाना चाहती थी, तो माता ने कृष्ण को गोद में ले लिया और कृष्ण में और माता में दोनों में कंपटीशन लग गया। माँ दूध पिलाते जा रहे थे, कृष्ण दूध पीते जा रहे थे, माँ पिलाते जा रहे थे, कृष्ण दूध पीते जा रहे थे। तो माँ को लगा कि बाप रे इतना दूध पीने से कहीं अपच ना हो जाए, ऐसा होता है बच्चों में अपच, ज़्यादा दूध पीने से अपच हो जाए। तो कृष्ण बार बार अपनी मुंडी निकाल के हंस रहे थे, माँ मुझे और पीना है, तो और पी रहे थे और दूध पी रहे थे, माँ भी पिलाते जा रहे थे, दोनों में एक तरह का कंपटीशन लग गया। तो माँ बीच बीच में कृष्ण को मुख छूने लगती थी। तो इस तरह से माँ बहुत चिंता में रहती, इतना दूध कैसे पिरा है आज, अचानक से इसको क्या हो गया, इतना दूध कैसे पिरा है। तो भगवान सोच रहे थे मन में, अरे माँ मैं थोड़ी अकेले पी रहा हूँ, सारा विश्व पी रहा है, देखना चाहती है सारा विश्व कैसे दूध पी रहा है। तो भगवान ने जमाई दे दी। तो भगवान ने अपने मुख खोल दिया और माँ ने क्या देखा, माँ ने देखा कि सारा आकाश, सारा अंतरिक्ष, सारा ज्योतिर्मंडल, सारी दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, सब कुछ माँ ने अपने बेटे के मुख में देख लिया। मानो भगवान अपनी माँ से बताना चाहते, माँ देख ले मैं अकेला ही तेरा दूध नहीं पी रहा हूँ, सारा संसार तेरा दूध पी के तृप्त हो रहा है। तो इस तरह से भगवान ने ये दिव्य लीला की, और माँ ने जब ये देखा कि मेरे बेटे के मुख में सब कचरा कहाँ से आ गया, माँ का सर्वप्रथम दिमाग, माँ के मन में यही आया कि ये सब कचरा मेरे बच्चे के मुंह में क्या कर रहा है, और ये सोचकर माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अभी भगवान की एक बहुत ही विशिष्ट लीला में हम लोग प्रवेश करते हैं, भगवान के नामकरण लीला। अभी वसुदेव जी मथुरा में थे, कंस के कारागार से छूट चुके थे, और वसुदेव जी क्षत्रिय थे। तो वसुदेव जी चाहते थे कि बलराम जी और कृष्ण, इन दोनों का जो नामकरण हो वो हमारे पुरोहित के द्वारा हो। मतलब वो क्षत्रिय थे और वसुदेव नंद बाबा थे वैश्य, और नंद बाबा को ये पता नहीं था कि वसुदेव, ये पता था कि रोहिणी का पुत्र जो बलराम है वो वसुदेव जी का पुत्र है, लेकिन नंद बाबा को ये नहीं पता था कि वसुदेव जी का भी पुत्र कृष्ण है। लेकिन वसुदेव जी को तो पता था कि दोनों मेरे पुत्र है, तो ये सोच रहे थे कि किसी न किसी तरह से इनका जो नामकरण संस्कार है वो क्षत्रिय स्टाइल से होना चाहिए, हमारे कुल के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को विनंती की, हे गर्गाचार्य जी, आप कृपा करके गोकुल चले जाइए और नंद बाबा के पास जो मेरे दोनों पुत्र हैं उनको उनका नामकरण करा दीजिए। तो गर्गाचार्य जी की विनंती सुनकर, अभी गर्गाचार्य जी तो भगवान की सेवा प्राप्त है कि भगवान को नामकरण, भगवान को नाम देना है, तो ये बात सुनकर गर्गाचार्य जी को अत्यंत प्रसन्न हुए और गर्गाचार्य जी नंद बाबा के पास पहुंच गए। जैसे ही गर्गाचार्य जी का आगमन हो गया घर पे, तो सहसा नंद बाबा खड़े हो गए और उनका सत्कार किया और उनकी पूजा की। कैसे पूजा की? जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही उन्होंने गर्गाचार्य जी की पूजा की। ये भगवान ही है यही मानकर नंद बाबा ने इन गर्गाचार्य जी की पूजा की। वास्तव में जो अध्यात्म गुरु होते हैं उनकी इसी तरह से पूजा की जाती है, भगवान मानकर ही पूजा की जाती है। यदि वो सेवक भगवान होते हैं, एक तो जो गुरु होता है वो सेवक भगवान होता है, अर्थात जो भगवान की सेवा करता है, लेकिन उनमें सारे भगवतीय गुण होते हैं, ऐसे इसलिए उनको सेवक भगवान कहा जाता है। अब श्रीमद् भागवतम में देखेंगे बहुत बार सुखदेव गोस्वामी को भगवान बोला जाता है, नारद जी को भगवान बोला जाता है, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ भगवान ये टाइटल जुड़ा हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि उनमें भगवतीय गुण है। और हमारे गुरु, हम लोग सुबह संसार दावादल में जो गाते हैं कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् लभते गुतोपि ध्यायस्तु वंस्य यशस्य संध्यं वंदे गुरु से चरणारविंदम्, कि गुरु से, गुरु की कृपा से ही हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। यदि गुरु प्रसन्न है तो अर्थात कृष्ण प्रसन्न है। कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है कि साधुओं की सेवा। उसी तरह से उसी पंक्ति में बोला कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्रों में यह बताया गया है, क्या बताया गया है कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तता भावतः सद्धि किंतु प्रबोर्य प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। कि समस्त शास्त्रों में बताया गया गुरु साक्षात भगवान ही है, फिर उसके बाद बताया किंतु ये जानना चाहिए कि वो भगवान का सेवक है, सेवक रूप में उनको सेवक भगवान है। तो इसी तरह से नंद बाबा अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे कि गर्गाचार्य जी उनके घर पे आए थे। तो गर्गाचार्य जी की खूब अच्छे से सेवा शुश्रूषा करके उनके चरणों में विनती करते हैं कि हे गर्गाचार्य जी, हम तो ऐसे हैं कि आपके पास आ नहीं सकते, लेकिन आप कृपा करके हमारे घर पर आए, निश्चित रूप से आप हमारा संसार बंधन काटने आए। देखिए साधु लोग जब गृहस्थों के घर पर जाते हैं तो गृहस्थ लोग तो अपने जाल में रहते हैं, अपने बिजनेस में रहते हैं, उनको तो भगवान जीवन के बारे में कुछ पढ़ा नहीं रहता है, लेकिन ये हरे कृष्ण वाले घर पे पहुंच जाता है और उसके जीवन में पूरा उल्टा पुलट कर देते हैं। बेचारा गृहस्थ अच्छा खासा अपने बिजनेस करता रहता है, कोई टेंशन होता नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण वाले पहुंच जाते हैं और सारा उसका जीवन का उल्टा पलट करते हैं। वो बेचारा अपने साधु के मार्ग तिलक बिलक मार के सारा बाल बिल मुंडा के शीका बीका रख के एकदम हरे कृष्ण करने लगता है। तो ये साधु लोग जब घर पर जाते हैं तो संसार बंधन काटते हैं, क्योंकि अगर साधु लोग घर पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे घर गृहस्थी चलती रहेगी और शरीर ऐसे छूट जाएगा। इसलिए हरे कृष्ण वाले जाते हैं और उस गृहस्थ का संसार बंधन काट देते हैं, अपनी संगति देकर भगवान के बारे में कथा सुनाकर उस गृहस्थ का संसार बंधन काट देते हैं। बस एक बार जाते हैं तो साधु लोग उसे पूजा करते हैं, दान दक्षिणा दे देते हैं, तो साधु दूसरी बार आके माला दे देता है, भगवत गीता थमा देता है और फिर जादू जब करना चालू, संसार बंधन खत्म। एक बार भगवान का नाम जीवा पर आ गया,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो एक बार भगवान का नाम जीवा पर आ गया, बस फिर अब संसार बंधन नहीं रहेगा, तो वो जीव पार हो गया। तो गर्गाचार्य जी कि महिमा के बारे में नंद बाबा भली भांति जानते थे, तो नंद बाबा कहते हैं कि हे गर्गाचार्य जी, आप तो ज्योतिष शास्त्र के रचयिता है, तो ज्योतिष शास्त्र है उसके ये रचयिता है, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र रचा है। तो नंद बाबा उनकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आप तो भूत जानते हैं, भविष्य जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरी इच्छा है, मैं कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ आपके सामने। तो गर्गाचार्य जी बोले, बोलिए। मैं गर्गाचार्य जी अपना प्रयोजन नहीं बता रहे फिलहाल, गर्गाचार्य जी आए, उनकी सेवा को स्वीकार किया, लेकिन गर्गाचार्य जी अपना प्रयोजन नहीं बता रहे। तब नंद बाबा अपना प्रयोजन बताते कि हे गर्गाचार्य जी, आज भगवान की विशेष कृपा है कि आप हमारे घर पर आए हैं, तो एक विशिष्ट कार्य कर दीजिए। विशिष्ट कार्य ये है कि आप कृष्ण का, आप मेरे बेटे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। मेरे दो बेटे यहाँ पर दो लाला है, रोहिणी का पुत्र और एक मेरा पुत्र है, इन दोनों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी डर गए, भाई यहाँ पर करवट बदलने के लिए महोत्सव होता है, एक छोटा सा लाला करवट बदल दे उसके लिए फेस्टिवल लोग मनाते हैं, यहाँ पर मैं इनके बच्चे का नामकरण संस्कार कर दूँ तो इतना बड़ा फेस्टिवल बनाएंगे कि कंस का बात फैल जाएगा, कंस मुझे अरेस्ट कर लेगा। क्यों अरेस्ट कर लेगा? देख लेगा कि गर्गाचार्य किसका है, गर्गाचार्य किसके पुरोहित है, वसुदेव जी के, जा कर रहे हैं नंद बाबा के पास, नंद बाबा किसका भाई है, इन्हीं का। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, देखिए नंद बाबा, मैं इस आपके झमेले में पड़ने वाला नहीं हूँ, साफ मना कर दिए, आप लोग छोटी छोटी बात पर इतने बड़े बड़े महोत्सव मनाते हैं, मुझे दिक्कत हो जाएगी। अगर कंस को पता चल गया कि मैंने आपके बेटों का नामकरण संस्कार कर दिया है, तो वसुदेव जी के संबंध के नाते वो कृष्ण को मार डालेगा और उस पर सारा जो ब्लेम है उस पर आ जाएगा, इसलिए मुझे कोई रुचि नहीं आपके बच्चों का नामकरण संस्कार कराने की। नंद बाबा ने विचार किया, हाँ ये तो बात तो सही है, हम लोग छोटी छोटी बात बात पर हम लोग महोत्सव मनाते हैं, कृष्ण जन्म लीला का इतना बड़ा महोत्सव हो गया, उसके बाद शकट उलट गया तो उसकी पूजा करने के लिए सारे साधुओं को घर पे बुलाया, सारा ब्रजमंडल लेकर घर पे आ गया। ऐसे बहुत सारे लीला है जिसमें छोटी छोटी चीजें हो जाती थी, सारा का सारा गोकुलनंद बाबा घर पे आ जाता था। अभी नामकरण संस्कार करने के बाद हो जाएगी तो सारे देवताओं को पता चल जाएगा गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार कर दिए। तो नंद बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी ठीक है, कोई महोत्सव नहीं मनाते, आप चुपचाप से एकांत में इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए, आप चलिए हमारे साथ, गर्गाचार्य चलिए, हम लोग गौशाला में चलते हैं, गौशाला में बस आप रहेंगे, मैं रहूंगा और दोनों माता रहेंगे अपने बच्चों के साथ, बस हम लोग इतने लोग रहेंगे और किसी को कोई कानों का खबर नहीं होगी, हमारे घर में किसी अन्य लोगों को बताया नहीं जाएगा कि आपने उनका नामकरण संस्कार किया है। तब गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, गर्गाचार्य जी बोले ठीक है करते हैं। तब गर्गाचार्य जी ने एकांत में उनका नामकरण संस्कार कर दिया। उन्होंने कहा, ये जो रोहिणी जी के हाथ में ये जो लड़का है, इसका नाम होगा रोहिणी है, कि क्योंकि रोहिणी का पुत्र है इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा। इसका एक और नाम है, वो है राम, क्योंकि ये अपने लीलाओं द्वारा सबको रमाएगा, सबको मोहित करेगा, इसलिए इसका नाम राम है। इसका एक और नाम बल भी, क्योंकि ये बहुत बलवान है इसलिए इसका नाम बल भी है, और क्योंकि ये यादवों के बीच में और आपके बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा संदर्शन। इस तरह से इस बालक के, इस रोहिणी के पुत्र के ये चार नाम प्रसिद्ध रहेंगे। हम लोग जो बलराम बोलते हैं, ये दोनों नामों का कॉम्बिनेशन है, वास्तव में बलराम ये नाम गर्गाचार्य ने रखा नहीं है, ये हम लोग ने रखा है, भक्तों ने रखा हुआ है बलराम। उसके बाद कृष्ण की तरफ देखते कहते हैं, ये जो सावला ये जो कृष्ण है, ये हर युग में आता है, हर युग में ये जन्म लेता जन्म ग्रहण करता है, इसके अनंत कोटि नाम है। कितने नाम रखो इसके, इसके तो अनंत 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 कोटि नाम है। इन नामों के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन साधारण मनुष्य इसके नामों के बारे में जानकारी नहीं रखता। तो इसका इसने पहले श्वेत वर्ण में आ चुका है, फिर रक्त वर्ण में लाल लाल शरीर धारण कर चुका है, फिर भविष्य में ये चैतन्य महाप्रभु मतलब पीत वर्ण में आएगा, और इस समय ये कृष्णताम को प्राप्त हुआ है, अर्थात ये कृष्ण वर्ण में आया हुआ है, तो इसका नाम होगा कृष्ण। और ये वसुदेव जी का, अभी देखिए रहस्य कि ये गंगाचार्य जी बता रहे हैं कि हे नंद बाबा, ये पहले ऐसा नहीं बोल रहे कि पहले के समय ये कभी वसुदेव जी का भी पुत्र बना है, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको कहेंगे श्रीमान वसुदेव। अभी पहले थोड़ी पहले के जन्म की बात थोड़ी, अभी वसुदेव का पुत्र बने थे, इस रहस्य को जान, इसलिए इनका नाम पड़ा वासुदेव। तो अपने पिता के नाम से भगवान ने अपना एक नाम ले लिया है वासुदेव। तो वसुदेव जी इस तरह से बता के गर्गाचार्य जी भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये आपका परम कल्याण करेगा, बड़े बड़े संकटों से ब्रजमंडल की रक्षा करेगा, आपके गोकुल में बड़ी बड़ी विपत्ति आने वाली है, और सारी विपत्तियों से आपका ये पुत्र, ये जो आपका पुत्र है, आप उनकी रक्षा करेगा। नंद बाबा पूर्व इसकी महिमा के बारे में बताना चाहता हूँ कि पूर्व काल में एक बार डाकुओं ने सारे संसार को त्रस्त कर दिया था, उस समय आपके पुत्र ने पृथ्वी के रूप में अवतार लेकर उन डाकुओं का संहार करके धर्म की स्थापना की थी। तो इस तरह से नंद बाबा को अपने बेटे की महिमा सुना रहे हैं। तो नंद बाबा तो बड़े आश्चर्य के साथ सुन रहे हैं, अरे बाप रे, इस सारे इतना, ये दोनों बालक बड़े बलवान हैं, बड़े सौभाग्यशाली हुए हैं कि मेरे घर पे ये दोनों महान बालक बच्चे पैदा हुए। तो गर्गाचार्य जी और कहते हैं कि नंद बाबा, आपके इस बेटे से प्रेम करने वाला व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है। जिस तरह से भगवान विष्णु के आश्रित देवता लोग रहते हैं, और जैसे भगवान विष्णु के आश्रित जो देवता होते हैं उनको असुरों से कोई भय नहीं होता, उसी तरह से आपके बेटे से प्रेम करने वाले जो लोग होते हैं, आपके बेटे से जो प्रेम करने वाले लोग हैं, उनको उनके हृदय के शत्रु और भार के शत्रु कभी जीत नहीं सकते। यदि हम लोग कृष्ण से प्रेम करेंगे तो भार का शत्रु तो हमको जीत नहीं सकता। तो पांडवों के जीवन चरित्र से देख लिया, बड़े बड़े संकट आए लेकिन भगवान ने उनकी हर स्थिति में हर समय की रक्षा की, पर अंदर के शत्रु एक बार हृदय में भगवान का नाम जपेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे, तो हृदय में जो कचरा है वो कैसे निकल जाएगा। तो इस तरह से गर्गाचार्य जी उनके बेटे की महिमा सुना रहे थे, और कहते हैं कि गुण में आपका बेटा, गुण में, संपत्ति में, कीर्ति में, सौंदर्य में, प्रभाव में एग्जैक्ट बिल्कुल नारायण, एकदम नारायण के समान है। अभी इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि आपके बेटे में और नारायण में कोई अंतर नहीं है, या लेकिन अगर डायरेक्टली बता देंगे तो उनका जो भाव है, मूड है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए गर्गाचार्य जी इस तरह से बता रहे हैं कि ये साक्षात गुण में, कीर्ति में, यश में, सौंदर्य में, प्रभाव में सब तरह नारायण के समान है। तो इस तरह से भगवान के गुणों को गाकर गर्गाचार्य जी चले गए। तो हमें भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं करना है, कोई बड़े कठिन तपस्या नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस भगवान के ये जो मधुर लीलाएं हैं। देखिए भागवत दो प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार के भागवतों की सेवा करनी आवश्यक है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ग्रंथ भागवत होता है और एक व्यक्ति भागवत होता है। व्यक्ति भागवत जो गुरु होता है उनकी सेवा कैसे की जाती है, उनके आदेशों का पालन करते हुए। ये आवश्यकता नहीं है कि हर शिष्य को गुरु के पास में रहना पड़े, उनके गुरु के पास में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो और उनके चरण सम्मान करें या फिर और निजी सेवा मिले, नहीं, ये आवश्यक नहीं है। गुरु की जो इच्छा है, उनका जो आदेश है, उसका पालन करने से उनकी सेवा हो जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भागवत की सेवा कैसे होगी, कोई बता सकता है भागवत की सेवा कैसे होगी? भागवत की सेवा होगी तीन चीजों से, भागवत को सुन के, भागवत को पढ़ के, और भागवत का कीर्तन करके, भागवत के बारे में श्रीमद् भागवत गाकर, भक्तों को भगवान के चरित्र सुनाकर इस तरह से भागवत की सेवा की जाती है। तो यदि हम लोगों को अपने जीवन में, हम लोगों का ध्येय क्या है, हम लोगों का ध्येय है भगवान की लीला में प्रवेश करना, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो श्रीमद् भागवत में क्या है, श्रीमद् भागवत में भक्तों के चरित्र रखे गए हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज या अन्य भक्तों के चरित्र उसमें रखे गए हैं। उन्होंने भगवान को किस तरह से प्राप्त किया, ये इस चरित्र को रखा गया, कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। यदि हम लोग नित्य नियम से इन कथाओं को सुनेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनका कीर्तन करेंगे, तो हम लोगों में उन भागवत जो महाभागवतों के चरित्र जो भागवत में रखे गए हैं उनके गुण हम लोगों में आ जाएंगे, उनके जैसे हम हो जाएंगे। तो जब तक हम लोग भागवत का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तब तक भागवत नहीं बनेंगे। तो भागवत का आश्रय ग्रहण करेंगे, भागवत की सेवा करेंगे, तभी हम लोग भागवत बनेंगे। और भागवत बने बिना, भगवान का प्रेमी भक्त बने बिना भगवान की लीला में प्रवेश नहीं है, भगवान सामने आएंगे नहीं। इसलिए हमें जीवन में निर्णय कर लेना चाहिए कि एक दिन का थोड़ा सा समय भागवत के लिए दे दिया जाए। गुरु की आज्ञा है, सोलह वाला जप करो, चार नियमों का पालन करो, और इस वो तो करना ही है, और ये भागवत पढ़ना चाहिए। एक थोड़ा सा समय निकाल कर जिस तरह से भागवत श्रवण करने के लिए समय निकालते हैं, उस तरह से एक व्यक्तिगत अध्ययन के लिए भी समय निकालना चाहिए। तो इस तरह से भागवत को पढ़ेंगे 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 तो हम लोग जो भागवत के जो भागवत में जो व्यक्तित्व रखे व्यक्ति है जिनके चरित्र भागवत में रखा गया है उनके जैसे हम लोग भी हो जाएंगे, उनके सारे गुण हमारे में आ जाएंगे और हम लोग भी कृष्ण को पा लेंगे। तो भगवान इस धराधाम पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वेदव्यास जी को भेज देते हैं। तो वेदव्यास जी यहाँ पर आकर शास्त्रों की रचना करते हैं, श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। क्यों करते हैं, हम ही लोगों के लिए करते हैं। साधु लोग उनको उसी भागवत में से हम लोगों को भगवान की कीर्ति और यश को सुनाते हैं, और हम लोगों को भागवत दिया गया है लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं दिया गया है, उसको पढ़ने के लिए दिया गया है। गुजराती में भागवत अवेलेबल है ना, तो थोड़ा सा दो चार श्लोक, एक श्लोक, एक घंटा भागवत के लिए देना चाहिए व्यक्तिगत अध्ययन। तो उससे धीरे 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 हमारा भागवत में रुचि हो जाएगी, भगवान की लीलाओं में रुचि हो जाएगी, और भगवान का नाम तो है ही। तो इस तरह से भागवत की महिमा इसलिए है क्योंकि इसमें हर श्लोक में सिर्फ भगवान का नाम है, इसलिए भागवत की महिमा है। तो भगवान का नाम जप कीजिए, भागवत श्रवण कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।